राष्ट्रीय डाक चल रहा था 9 मार्च 1967। बात चल रही थी ना कौन हम जो कुछ भी देखते हैं सब विनाश होने वाला है और हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। ये दुनिया के जो भी डायलॉग हैं, ड्रामा आते हैं, ये सब हमारे लिए, तो हमको तो शांति में रहकर ही वर्षे को याद करना है। दुनिया के लिए अशांति है, हमारे लिए शांति। तो बाप हमको जो डायरेक्शन देवे उस पर हमको चलना है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे बाप ऊंचे ऊंचे ही बनावेंगे और ऊंचे ऊंचे बनाने के लिए ही श्रीमत देते हैं। है तो सबका अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब। जैसे जैसे जिसने कर्म किए हैं उन कर्मों के आधार पर ही श्रीमत को फॉलो करेंगे। तो हर एक को अपने लिए पूछना पड़े, हम आधा कल्प के रोगी हैं। रोगी बनते बनते अब महाभिकारी महापापी बन गए। फिर अब हमारी आत्मा महापुण्य आत्मा बन रही है। ऐसे कोई नहीं है जो तन मन धन सब का सब तुरंत दे। पहले पहले तो जिनमें प्रवेश किया उनका ही तन मन धन बेहद की सर्विस में लगाई दिया। हमको तो बात नहीं मिलती। जब पक्का निश्चय हो गया कि हमें बादशाही मिलती है तो बाकी फिर क्या चाहिए। और बाप तो लेने वाला कुछ भी नहीं है, वो तो देने वाला है। कौन देने वाला है? लेने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि शिव बाबा तो कहीं अपने लिए महल आदि मकान बनाते नहीं है। वो राजाएं होते हैं, इतने बड़े बड़े महल माड़िया आदि बनाते हैं। दैन भी है आधा में जाम आधा में रैयत। आधा में राजा और राजा का परिवार पलता है और आधे में सारी प्रजा पलती है। यहाँ तो देखो राजाओं का राजा महाराजा बनाने वाला अपने लिए कुछ भी नहीं बनाते, फिर भी देखो मनुष्य तो घोर अंधेरे में। ये महल माड़ियां अटारियां जो बनती चली जा रही है वो कुछ भी रहने का नहीं है। कोई कोई कहेंगे बाबा भी तो मकान बनाते रहते हैं। बनाते रहते हैं या नहीं बनाते रहते हैं? अब वो तो बनाते हैं बच्चों के रहने के लिए, क्योंकि पिछाड़ी में तुम बच्चे ही पहाड़ी पर रहते हो। विनाश देहे तो सही, परंतु कब होगा वो किसी को पता नहीं। योगवंश से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अभी तुम जानते हो कि हम विश्व के मालिक थे, उस समय और कोई भी धर्म नहीं थे। दैवी धर्म के बाद रावण राज्य स्टार्ट होता है। रावण राज्य है द्वैत धर्म और राम राज्य है अद्वैत। जहां राम राज्य होता है वहां कोई दूसरा धर्म दूसरा राज्य नहीं होता, वो है ही अद्वैत। और जहां रावण राज्य होता है वहां दूसरे दूसरे धर्म भी होते हैं, राज्य भी होते हैं, भाषाएं भी होती हैं, द्वैतवाद है। तो द्वैतवाद से होते हैं दैत्य और अद्वैतवाद से होते हैं देवता। तो कैसे बनेगा अद्वैत? तब ही बनेगा जब एक ऊंचते ऊंच को पहचानेंगे और उसकी मत पर चलेंगे। नहीं पहचानेंगे तो द्वैत में ही फंसे रह जाएंगे। जो पहचानेंगे वो ऑलराउंड पार्टीधारी बनेंगे, 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता बनेंगे। और जिस एक को नहीं पहचानेंगे उसकी मत पर नहीं चलेंगे तो द्वैतवाद में फंस पड़ेंगे। इन अक्षरों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता है, न जानता है न समझ सकते हैं और न समझा सकते हैं। अभी हम तो जा रहे हैं अद्वैत की ओर। ऐसे तो हम संगम पर हैं, पहले शांति धाम में जावेंगे फिर सुख धाम में आवेंगे। बाप कहते हैं सुख धाम में आना है तो बहुत मीठे बनो। कुछ बच्चे पूछते हैं बाबा बच्चे तो बहुत तंग करते हैं, क्रोध आ जाता है। तो बाबा कहते हैं क्यों नहीं, प्यार से न समझे तो थोड़ा थोड़ा आर मार से सुधारना है। लक्ष्य तो अंदर सुधारने का है ना, अंदर से प्यार रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों का कल्याण तो करना है। ये देखो बाप टीचर सदगुरु ये तीनों कंबाइंड होकर आते हैं और तीनों ही संबंध कल्याण करने वाले हैं। अभी बाप के पास बच्चे बैठे हैं, जब बैठे हैं बाप के पास तो बर्थडे आज मनाने में क्यों पैसे वेस्ट गवाएं? बर्थडे तब मनाया जाता है या तब मनाया जाए जब सामने मौजूद न हो? तुम्हारे पैसे की बहुत वैल्यूबल थे जो कि सारे विश्व को स्वर्ग बनाती है। इसलिए बर्थडे आज मनाने में पैसे फालतू मत गवाओ। बर्थडे तो देह का ही मनाया जाता है, समय तो कम है, 9 वर्ष बाकी है। इनसे पहले भी बहुत कुछ खिचपिट होनी है। कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? बैरमुखी वृद्धि बुद्धि जिन बच्चों की है, जिन्होंने एक बाप के स्वरूप को नहीं पहचाना, उनकी बुद्धि बाहर की दुनिया में जाएगी। और जो अंतर्मुखी बच्चे हैं, आत्म की स्थिति के पक्के हैं, उनकी बुद्धि में फट बैठ जाएगा। ये तो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की बात है। 9 वर्ष बाकी बचे हैं, समझा जाता है कि आग तैयार हो रही है, परंतु विनाश तब होगा जबकि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कर्मातीत अवस्था को पावे। कर्म तो करें कर्म इंद्रियों से, लेकिन अतीत स्टेज में रह करके करें। सारा दिन सारी रात बाप को और वर्ष को याद करना है। बाहर में देखो क्या लगा हुआ है। अब जिनको इस रास्ते पर आना होगा वो ही आवेंगे और वर्षा पावेंगे। दुनिया में तो देखो क्या लगा पड़ा है, पत्थर मारते ही रहते हैं। आसुरी दुनिया है ना, कामेशु क्रोधेशु है, काम की आग लगी हुई होती है तो क्रोध में जरूर आ जाते हैं, पत्थर मारते रहते हैं, एक दूसरे को लात मारते रहते हैं। यहां पर तो कोई आवाज नहीं, कोई हंगामा नहीं है, सर्विस करनी है, तुम माली हो ना, तो तुम बच्चों को यहां बहुत फायदा है। कितनी फैरत में रहते हो और बाहर की दुनिया में तो देखो कितना झंझट है। तो वैसे बाहरी दुनिया में दिल नहीं लगती है, बड़ी गंदी छीछी दुनिया है, और उस दुनिया के मनुष्य कितने घोर अंधेरे हैं। अभी तुमको देखो कितना सोजरा मिलता है। तुम बच्चे जानते हो कि हम इस खेल के अंदर पार्टधारी हैं। ये सृष्टि का चक्र हूबहू फिरता रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। और ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। बाप भी विचित्र है और तो सब चित्र वाले हैं। ऐसे तो सब आत्माएं विचित्र है, परंतु यहां आकर के शरीर लेती है इसलिए उनका चित्र बनता है। बाप को भी बुलाते हैं तो जरूर यहां ही आना पड़े, प्रेरणा की तो बात नहीं है। कि बाप ऊपर बैठे बैठे प्रेरणा करते रहेंगे। प्रेरणा माने विचार, तो परमात्मा प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते हैं। वो तो यहां ही सृष्टि पर आते हैं। दस मार्च 1967 का प्रातः क्लास है। भारत में भारतवासी गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल अलग रहे, कौन रहे बहुकाल अलग? जो एक जन्म लेने वाले हैं वो गाते हैं। क्यों? एक जन्म वाले लेने वाले क्यों नहीं गा सकते? वो तो परमधाम से अभी अभी उतरे, कम जन्म लेने वालों की बात है या 84 जन्म लेने वालों की बात है? जिन्होंने कम जन्म लिए हैं वो आत्माएं परमात्मा से बहुकाल जुदा होके नहीं रही
है?
वही रही। अच्छा, अरे गए मुगालते में जो एक दो जन्म लेने वाली आत्माएं हैं उनके लिए ये बात ही नहीं है, क्योंकि परमधाम में जुदा होने और मिलने की कोई बात ही नहीं होती। जुदाई कहां की होती है, साकार दुनिया की या निराकारी दुनिया की? साकार दुनिया की बात है। तो क्या जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वो आत्माएं परमात्मा से बहुत काल से दूर रही? कितना काल दूर रही है? 5000 साल दूर रही है? वो तो दुनिया की सभी आत्माएं जो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर है उस हिसाब से तो सभी 5000 साल दूर ही रहे। जो भी आत्माएं चाहे कम जन्म लेने वाली है ज्यादा जन्म लेने वाली है वो सभी तो दूर रही। 5000 साल की अगर बात है तो कहां की बात है? संगम युग में जो आत्मिक रूप में रहने वाले बच्चे हैं बाप के, जिनकी आत्मिक दृष्टि पक्की है, एक जन्म में ही आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाती है एक जन्म के पुरुषार्थ में, उन आत्माओं की बात है कि यज्ञ के आदि में भी वो नजदीक थी और फिर बहुत लंबे समय के बाद, लंबे अरसे के बाद जब सूर्यवंशी आत्माएं सारे ही ब्राह्मण परिवार से बिछड़ जाती है, बाप से बिछड़ जाती है, तो बहुत लंबे समय के बाद परमात्मा बाप से आकर के मिलती है। यज्ञ की याद में सुप्रीम सोल बाप बाप के रूप में भी पार्ट बजाय रहा था। और 10 साल के बाद मां का रूप भी प्रत्यक्ष हुआ। जब से मुरली निकलती चली आई ब्रह्मा का पाठ प्रत्यक्ष हुआ, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय प्रत्यक्ष हुआ। और लंबे समय तक माँ के द्वारा बच्चों की पालना होती रही, लेकिन माँ की पालना में दुधमोहे बच्चे पलते रहे, बच्चा बुद्धि। क्योंकि पालना करने वाले को भी टाइटल क्या दिया, ये ब्रह्मा बेबी है। तो ब्रह्मा बेबी की गोद में पलने वाले भी क्या हुए, बेबी बुद्धि हुए। यज्ञ के आदि में जो छोड़ करके चले गए, वो सब सारी सृष्टि की बाप समान बीज रूपात्मा थी। बीज को बाप कहा जाता है, वो बच्चा बुद्धि नहीं कहेंगे, शूट बुद्धि थे। कोई कहेंगे अगर वो शूट बुद्धि थे तो फेल क्यों हो गए, मुरली में तो बोला है कि राम फेल हो गया। जो बाप का पार्ट बजाने वाली आत्मा राम ही फेल हो गई, तो जो राम बाप के फॉलोअर विशेष बच्चे हैं, वो फेल नहीं हुए, वो भी फेल हो गए। तो फेल होने वालों को बच्चा बुद्धि नहीं कहेंगे तो क्या सालिम बुद्धि कहेंगे। मुरली में ही जवाब दिया है, उस समय बच्चे छोड़ के चले गए क्योंकि उस समय इतना ज्ञान नहीं था। जो गीता माता गीता ज्ञान के रूप में ब्रह्मा के मुख से हमारे सामने आई, वेदवाणी के रूप में हमारे सामने आ गई, वो गीता का इतना विस्तार का रूप हमारे सामने नहीं था। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे, उनको बुद्धि का भोजन नहीं मिलेगा तो वो चले ही जाएंगे। लेकिन अभी तो बुद्धि का भरपूर भोजन मिल चुका है। अभी हिलने डुलने की बात नहीं है। तो उन बाप समान बच्चों की बात है जो यज्ञ के आदि में साथ साथ थे और यज्ञ में किसी कारण या कारण बिछुड़ गए और बड़े लंबे समय के बाद फिर दोबारा मिलते हैं। अभी भी आते जा रहे हैं। कहाँ आते जा रहे हैं, एडवांस में। पहले बेसिक नॉलेज की आदि में थे और अभी एडवांस नॉलेज में आते जा रहे हैं। उनके लिए बोला गया आत्मा है परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये नहीं कहा आत्मा है परम पिता बहुकाल अलग रहे। आत्माओं में जो परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी आत्मा है उसके साथ पार्ट बजाया और बाद में अलग हो गए और बहुत काल तक अलग रहे और अंत में आकर के मिलते हैं। तो अब वो बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं का बाप परमपिता हमको राजयोग सिखाए गए। देह अभिमानियों का बाप देह अभिमानियों को राजयोग नहीं सिखाए रहे हैं। कितने हुए आत्माभिमानी और बाकी दुनिया में कितने हुए देह अभिमानी। जो आत्मा की पढ़ाई और आत्मा परमात्मा बाप की पहचान की पढ़ाई एक जन्म में ही पढ़ लेते हैं, परिपक्व 16 कला संपूर्ण आत्मा बन जाती है और 16 कला संपूर्ण बच्चों को जन्म देने काबिल बन जाती है। ऐसे 4.5 लाख बच्चे हैं जो आत्म की स्थिति वाले हैं और बाकी सब देवहान की स्थिति में पड़े रहते हैं। इस जन्म में पूरा पक्का पुरुषार्थ नहीं कर पाते इसलिए कम जन्म लेने वाले बनते हैं, कम कलाओं वाले बनते हैं। और अंजाम ये होता है कि जब रावण राज्य शुरू होता है तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम आत्माओं को बाप राजयोग सिखाते हैं। थोड़ा भी जिनके अंदर देह अभिमान है या देह अभिमान बचा रहने वाला है अंत तक की परीक्षाओं में, उनको बाप सन्मुख आकर के नहीं पढ़ाते। बाप आकर के अपना परिचय स्वयं ही देते हैं बच्चों को और सृष्टि की आजमत का भी परिचय देते हैं। फिर बच्चों में कोई नंबर आ रहे हैं, कोई तो पक्के निश्चय बुद्धि है, बच्चों में भी कोई ऐसे ऐसे हैं, क्योंकि सभी धर्मों के बीज है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनमें दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी सृष्टि के बीज है, बीज का कभी विनाश नहीं होता। तो नंबरवार तो बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं हम जीवात्माएं परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठे। इसके सन्मुख सत मुख, जो मुख है सच्ची बात सुनाने वाला है, सच्ची बात सुना करके सतयुग की स्थापना करने वाला है, सत्यनारायण के रूप में संसार में और भारत में खास उसकी कथा गाई जाती है, सत्य हरिश्चंद्र के रूप में नाटकबाजी दिखाई जाती है। उस बाप के सन्मुख बच्चे बैठे हैं, तो गाया जाता आत्मा परमात्मा लग रहे हैं बोकाल। अब मूल वतन में जब आत्माएं हैं तब तो अलग होने की बात ही नहीं। तथाकथित तो ब्राह्मण क्या समझते हैं? है कहां से अलग रहे बहुकाल? यज्ञ के आज की बात उनकी बुद्धि में आती है या परमधाम की बात आती है बुद्धि में? और मुरली क्या बोलती है? मूल वतन में जब आत्माएं हैं तब तो अलग होने की बात ही नहीं होती। यहाँ आने से जीवात्मा जब बनते हैं तो परमात्मा बाप से सब अलग हो जाते हैं। कब की बात हुई? कब अलग हो गए? यज्ञ के आज में ही अलग हो गए थे। परमपिता परमात्मा से अलग हो करके यहाँ पाठ बजाने आते हैं। आगे तो बिना अर्थ ऐसे ही गाते रहते थे, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल सुंदर मेला कर दिया, जब सदगुरु मिला दलाल। अरे ब्रह्मा के रूप में सदगुरु होता भी है, सदगुरु तो साकार में होता है, दलाल साकार में होता है या निराकार आकार में होता है? साकार में सदगुरु गया हुआ है, सदगुरु अकाल मूर्त कहते हैं, सदगुरु को काल नहीं खा सकता, सदगुरु की मूर्ति होती है, मूर्ति माने साकार होता है। तो जो साकार मूर्ति वाला बाप सदगुरु बन करके इस सृष्टि पर आता है तो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है ना। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा से हम अलग होकर के यहाँ पार्ट बजाने आए हैं तो तुम बच्चे ही पहले पहले बिछड़े हो क्या? तुम बच्चे पहले पहले बाप से बिछड़े हो, वो तथा कथित ब्राह्मण पहले पहले बाप से नहीं बिछड़े। हो सकता है कि अभी भी उनका दूसरा जन्म हुआ ही नहीं, इनका तथाकथित ब्राह्मण जो दीदी दादी दादाएं हैं उनकी बात नहीं है, तुम बच्चों की बात है। तो शिव बाबा पहले पहले तुमको मिलते हैं। कौन? शिव बाप मिलते हैं कि शिव बाबा मिलते हैं?
शिव बाबा।
क्यों? शिव बाप तुमको पहले पहले नहीं मिलते हैं? मान लो इस सभा में कोई 70 साल से ऊपर का बैठा है, बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? बैठे हैं। और 70 साल पहले तो ये किसी शुरू ही नहीं हुआ था। 36-37 से पहले तो यज्ञ की शुरुआत हुई नहीं थी। और बाप बाप के रूप में गुप्त रूप में बीजारोपण करने के लिए आया ही हुआ नहीं था। तो जो बच्चे 70 साल से ऊपर की उम्र के हैं और सन्मुख अभी बैठे हैं तो उनके लिए ये बात लागू नहीं होती?
होती है।
कैसे?
अनेक जन्म उनके साथ रहे होंगे।
हाँ, जो बच्चे राम वाली आत्मा राम बाप के साथ अनेक जन्म रहे हैं वो बच्चे यज्ञ के आदि में भी रहे थे, भले यज्ञ में नहीं रहे तो दोबारा आते हैं। इसलिए यहाँ शिव बाबा बोला है, शिव बाबा पहले पहले तुमको ही मिलते, शिव बाप नहीं बोला। क्योंकि मुरली में बोला है कि सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा ही है और दुनिया की कोई चीज इस सृष्टि पर सदा कायम नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शंकर का जन्म और मृत्यु नहीं दिखाई जाती, उनको जगत पिता के रूप में माना जाता है, नहीं दिखाई जाती उनको जगत पिता के रूप में माना जाता है। जगतम पितरम वंदे कहा जाता है। तो वो बाप पहले पहले तुम बच्चों को मिलते हैं बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में मिलते हैं। तो तुम बच्चों के खातिर बाप को आना पड़ता है, उन ब्राह्मणों के खातिर नहीं आना पड़ता है। क्योंकि बाप जानते हैं कि जो पूरे 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो ही इसे जन्म में अंत तक हमारे सहयोगी बनेंगे और बाकी तो अनिश्चय बुद्धि विनश्यति की स्टेज में चले जाएंगे। कम जन्म लेने वाले हैं वो नई दुनिया की स्थापना में बाप का अंत तक सहयोगी नहीं बनेंगे। तो तुम्हारी खातिर बाप को आना पड़ता है। कल पहले भी इन्हीं बच्चों को बाप ने पढ़ाया था जो कि अभी फिर से स्वर्ग की मालिक बनने थे। उस समय और कोई खंड नहीं था। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे जिनको डीटी रिलीजन डीटी डायनेस्टी भी कहते हैं। जो रिलीजन को नहीं मानते वो तो जैसे जानवर थे। कौन कौन रिलीजन को नहीं मानते हैं? नास्तिक रिलीजन को नहीं मानते, रिलीजन को मानेंगे, धर्म को मानेंगे, तो धर्म पिता को भी मानना पड़े। तो सिर्फ नास्तिक ही है इस लिस्ट में या और कोई धर्म भी है? है? आर्य समाजी जो अर्ध नास्तिक है वो भी नहीं मानते क्या कि आदि सनातन देवी देवता धर्म को स्थापन करने वाला कोई साकार में था? वो साकार देवी देवताओं कोई नहीं मानते। तो जानवर ठहरे, मनुष्य को तो हरेक को अपना रिलीजन होता है। रिलीजन होता ही है मनुष्य का, रिलीजन इज माइक कहा जाता है। कोई एक धर्म का पक्का है तो उसमें संगठन की पावर आ जाती है, जैसे इस्लामी, जैसे क्रिश्चियन। वो क्रिश्चियन जो कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, उनमें कितनी पावर बनी रहती, आखिरी जन्म में भी भारत में अंग्रेजों ने राज्य किया, वो राज्य, वो कंट्रोलिंग पावर, और आज की आर्य समाजियों के द्वारा जो कंट्रोल की जा रही है भारत की प्रजा, उस कंट्रोलिंग पावर में कितना अंतर है। जमीन आसमान का फर्क हो गया। समझते थे कि क्रिश्चियंस चले जावेंगे तो भारत में स्वर्ग बन जाएगा, राम राज्य आ जाएगा, लेकिन राम राज्य आया कि और ही रावण राज्य आ गया। उस समय पुलिस में ये ताकत थी, पुलिस के लोगों में, कि वो गुंडों से मिलकर के राजाई करे। आज की पुलिस गुंडों से मिल जाती है, कोई किसी का रक्षक नहीं। जो रक्षा मंत्री है उनकी कन्या को ही गुंडे उठा ले जाते हैं, तो क्या राज्य चलेगा? बाप कहते हैं रिलीजन इज माइट, धर्म में ताकत रहती है। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण कितनी ताकत वाले थे, कितनी ताकत वाले थे, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल किया। कौन से लक्ष्मी नारायण? सत्युग वाले या संगमयुगी लक्ष्मी नारायण की बात है? सीढ़ी के चित्र में तो दोनों ही दिखाए गए हैं। तो जो संगमयुग में पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं, राधा कृष्ण जैसे 84 जन्मों को जन्म देने वाली आत्माएं, जो बाप से डायरेक्ट पढ़ाई नहीं पड़ती, कौन?
सत्य के नंद,
राधा कृष्ण के रूप में जो जन्म लेने वाले बच्चे होंगे वो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ते। वो इनडायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते माँ के द्वारा, उनकी पढ़ाई में कमी रह जाती है, पूरी नॉलेज नहीं लेते, बेसिक नॉलेज लेकर के रह जाते। तो वो बच्चे और उनका जो भी सरपरस्त है साकार में, वो कमजोरी वाली आत्मा हो जाती है। उनको सत्युग का महाराजा कहेंगे, विश्व का महाराजा नहीं कहेंगे। और धर्मों वालों ने भी विश्व के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कितनी माथामारी की, हिटलर, नेपोलियन आदि ने, लेकिन सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं थी। वो धर्म के नाम पर अधम अधर्म पर भी उतर आए थे, हिंसा पर उतर आए, अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। जिस धर्म में अहिंसा नहीं वो धर्म अधर्म हो जाता है। तो ये रिलीजन की ताकत उन नर नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण में थी, कितनी ताकत वाले थे। सारे विश्व के सब धर्म की आत्माओं को कंट्रोल किया। अभी ये भारतवासी तो अपने धर्म को ही नहीं जानते, किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि बरोबर भारत में इन्हीं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। किन लक्ष्मी नारायण का राज्य था? वो संगमयुगी लक्ष्मी नारायण है जिनकी जन्मतिथि मुरली में बताई थी। क्या बताई थी? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। 66 की मुरली है। मतलब वो जन्म दिव्य जन्म है, बच्चे के रूप में गर्भ से जन्म लेने वाला जन्म नहीं है, वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। जैसे बच्चा जन्म लेने से पहले अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त होता है, जब जन्म लेता है तो संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। यहाँ कौन से संसार की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, बाहर की दुनिया की बात नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर संक्षिप्तर में कुछ ब्राह्मण थे जिन्होंने पहचान लिया ये बाप का स्वरूप है, ये लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, ये नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्माएं हैं। तो सब भारतवासी उन लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं हैं, तुम बच्चे जानते हो। इन्हीं का राज्य था। धर्म को नहीं जानने के कारण ये इररिलीजियस बन गए। रिलीजन में आने से तुम में कितनी ताकत आती है? क्या रिलीजन है तुम्हारा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। देवता नाम क्यों पड़ा? देवी देवता नाम क्यों पड़ा? क्या देवी और काहे का देवता? है सबको सुख देने वाला। देवताएं कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। दुश्मन भी होगा, आक्रामक भी होगा, हिंसा भी करेगा, गालियां भी देगा, उसको भी दुख देने का उनका लक्ष्य नहीं हो सकता। अगर दुख देने का लक्ष्य है तो अभी देवता बनने की स्टेज नहीं है। तो तुम देखो ये कलयुग दुनिया के आयरन एज पहाड़ को उठा करके गोल्डन एज बनाए देते हो। तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी धारणा में कितनी धैर्य है? ये धीरज कौन सी बात का है? अहिंसा परमो धर्म। हम कोई के ऊपर मनसा की, वाचा की, करुणा की हिंसा नहीं करेंगे। तो तुम आयरन एज की पहाड़ को उठा करके गोल्डन एज बनाते हो, सारे भारत को सोने का पहाड़ बना देते हो। सोने का पहाड़, सोना माने सच्चाई। वहां तो खानियों में ढेर सोना पड़ा रहता है, सोने के पहाड़ होंगे जो कि फिर वो उगलेंगे, सोना ही सोना उगलेंगे। सोने को गला करके उनकी ईंटें बनाई जाती, मकान तो बड़ी ईंटों के ही बनावेंगे ना। पहले छोटी छोटी ईंटों के मकान बनते थे पुराने जमाने में, बाद में बड़ी बड़ी ईंटें बनने लगी, और अभी सीमेंट की बहुत बड़ी बड़ी पत्थर जैसी ईंटें बनने लगी। अभी से ही फाउंडेशन पड़ रहा है, हद में चले गए कि बेहद में है? बेहद में क्या पावरफुल आत्माएं होंगी, उन आत्माओं का संगठन होगा। छोटी मोटी आत्मिक स्थिति वाली आत्माओं का संगठन नहीं होगा कि थोड़ी किसी ने हिंसा कर दी, थप्पड़ मार दिया, बाहर निकाल दिया तो दुश्मन बन गए, नहीं। पावरफुल आत्मिक स्थिति वाली बड़ी बड़ी ईंटें होंगी। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाती है ना, वो तो सब है अखानिया। बाप कहते हैं इन सब कहानियों का, आख्यानियों का सार मैं तुमको समझाता हूं। कौन सी आख्यानी बताइए अभी?
माया
मच्छंदर की कहानी। दिखाते हैं कि ध्यान में देखा कि हम झोली भर करके ले जाते हैं, ध्यान से नीचे उतरा तो झोली में कुछ भी नहीं रहा। तो देखो ऐसा तुम्हारा भी होता था ना, कब? आज में जिस समय भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ रहा था उस समय साक्षात्कार होते थे, ध्यान में चले जाते थे, स्वर्ग को देखते थे। अब कई जन्मों का लगाव तो लगा पड़ा है सोने से, तो सोना देखते थे तो झोली में भर लेते थे, नीचे आए सब खलास। इसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि। इस दिव्य दृष्टि में कुछ भी रखा नहीं है। जो दिव्य दृष्टि में आदि में जाने वाले थे वो सब शरीर छोड़ते जा रहे हैं। तो दिव्य दृष्टि अगर श्रेष्ठ नहीं है तो क्या श्रेष्ठ है? दिव्य बुद्धि श्रेष्ठ है। दिव्य दृष्टि जो पवित्र रहते हैं उनको मिलती है। पवित्रता बल संपन्न स्टेज वाली नहीं है तो भी उन आत्माओं को ऊंचा उठाने के लिए दिव्य बुद्धि का साक्षात्कार कराया जाता था। लेकिन दिव्य दृष्टि से दिव्य बुद्धि और भी तीखी है। अभी जो बाप के बच्चे हैं वो दिव्य दृष्टि को पसंद करने वाले होंगे या दिव्य बुद्धि को पसंद करने वाले होंगे? दिव्य दृष्टि दिल की चीज है और दिव्य बुद्धि दिमाग की चीज है। तुम बच्चे हो बुद्धिमान बाप के, बुद्धिमान बच्चे, तुम्हें साक्षात्कार की कोई भी आस नहीं है। साक्षात्कार माने जैसे स्वप्न की देखा, स्वप्न देखते हैं कोई अच्छा स्वप्न देखते हैं तो थोड़े समय के लिए खुशी आ जाती है। ऐसे ही जो ध्यान दीदार में जाते उनको थोड़े समय के लिए खुशी आ गई। अभी जो फाइनल परीक्षाएं होने वाली है उन ध्यान दीदार में जाने वालों की पोल पट्टी खुल जाएगी। ब्रह्मा बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ था, क्या करने लग पड़े?
रोने लग पड़े।
तुम बच्चे सारा ही विनाश दुनिया का इन आंखों से देखेंगे, हार्ट फेल होगा क्या?
नहीं,
योग बल वालों का कभी हार्ट फेल नहीं होता। वो भक्ति मार्ग अलग है। क्या वो सब क्या है? वो भक्ति मार्ग है। कब से कब तक यज्ञ के अंदर भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ा?
76
तक भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ता रहा, क्योंकि ज्ञान देने वाला बाप संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं हुआ। वो है भक्ति की माला। क्या भक्ति की माला? आ कि यहाँ हम पुरुषार्थ करेंगे, अगले जन्म में हम स्वर्ग में जावेंगे, अगले जन्म में स्वर्ग में जावेंगे, पढ़ाई यहाँ पढ़ेंगे, पढ़ाई की प्रारब्ध अगले जन्म में मिलेगी। इससे क्या साबित हुआ? भगत है या ज्ञानी है?
भगत है।
ये तो भक्ति पना हो गया। अरे कोई धोबी को भी कपड़ा डालता है तो इसी आस से डालता है कि धोबी हमारा कपड़ा साफ करके हमको दे देगा कल। ये थोड़े ही उसकी बुद्धि में होता है कि कपड़ा अगले जन्म में मिल जाएगा। यहाँ तो सारे ही भक्त है, ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक नॉलेज लेने वाले बैठे हुए हैं वो सब यही समझते हैं। क्या
अगले जन्म में
कि हमारा शरीर रूपी वस्त्र अगले जन्म में कंचन काया बन जाएगा। इस जन्म में नहीं बन सकता। तो बाप कहते हैं ये सब है अंधश्रद्धा का मार्ग। श्रद्धा विश्वास अच्छी चीज है लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नहीं है, दोनों का खेवैया एक बाप आया हुआ। आत्मा को भी पार ले जाता हूं और ये शरीर रूपी नैया को भी इस वैसे वैतरणी नदी संसार सागर से पार ले जाता हूं। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। उनकी ये भक्ति माल और तुम्हारी है ज्ञान माल। कौन सी माला है? रुद्रमाला। तुम्हारी है रुद्रमाला और उनकी है भक्तमाला। रुद्रमाला और विष्णु की माला, ये दो मालाएं होती है ना। रुद्रमाला में रुद्राक्ष के मणके होते हैं, विजय माला में तुलसी की माला होती है, विष्णु की माला कही जाती है, वो रुंड माला है, तुम्हारी मुंड माला है। मुंड ऊपर होता है या रुंड ऊपर होता है?
मुंड ऊपर होता है।
मुंड ऊपर होता है। जो मुंड ऊपर होता है वो सारे रुंड को चलाता है। मुंड है जैसे राजा और सारा शरीर है जैसे प्रजा। तो वो फिर है भक्ति की माल। अभी तुम तो पढ़ रहे हो राजाई के लिए। क्या क्या प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हो?
राजाई
की पढ़ाई पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो या पट्टरानी बनने के लिए पढ़ रहे हो? राजा बनने के लिए पढ़ रहे हो ना? रानी बनने के लिए पढ़ रहे हो ना महारानी बनने के लिए पढ़ रहे हो? महारानी को भी आधीन रहना पड़े या नहीं रहना पड़े? आधीन रहना पड़े। बाप तुम्हें क्या बनाने आए हैं? स्वाधीन बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग में मानते भी हैं। एक ही देवता है जिसको स्वतंत्रता का सम्राट माना जाता है। बाप शिक्षा ही देते हैं, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। अभी तुम पढ़ रहे हो राजाई की, तुम्हारा सारा उद्योग टीचर के साथ राजाई के लिए है। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुद्धियोग टीचर के साथ रहता है, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं तो टीचर के साथ बुद्धियोग रहता है, वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं तो टीचर के साथ बुद्धियोग रहता है, जानते हो कि बैरिस्टर खुद पढ़ करके क्या बनाते हैं? आप समान बनाते हैं। ये बाबा खुद तो बनते नहीं है लेकिन तुम बच्चों को बनाते। यहां यही वंडरफुल बात है। क्या कि भक्ति मार्ग में भी शंकर को कभी राजा ही ठाट बाट में नहीं दिखाते। ये हुआ नहीं पढ़ाई तुम्हारा बुद्धियोग शिव बाबा के साथ। इनको नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। इनको नॉलेज है, जानी जाननहार का ये मतलब नहीं है कि वो सबके दिलों को जानने वाला या एक एक के दिलों को जानने के लिए बैठ जावेंगे, देखेंगे कि इनके दिल के अंदर क्या है। नहीं, वो तो थॉट लीडर्स अलग होते हैं जो सब कुछ सुनाते हैं, उनको तो भूत विद्या कहा जाता है। क्या इसके अंदर क्या संकल्प चल रहा है, इसकी जेब में कितने नोट रखे हुए हैं, वो कौन बताते हैं? जो मजमा लगाते हैं, भूत प्रेतों को प्रवेश कराते हैं, वो भूत विद्या वाले ये बातें बताते हैं। तुम्हारी कोई भूत विद्या नहीं है। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। गैन भी है, मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार, वार मना वार मना देर, मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगी है? देर नहीं लगी? 70 साल किस खाते में गए? अरे 70 साल में से 40 साल तो ब्रह्मा के निकल गए, दादा लेखराज माँ के रूप में पढ़ाई के निकल गए, और बाकी
30 साल
बाप के रूप में और टीचर के रूप में जो पढ़ाई पढ़ाई गई वो सब पढ़ाई पढ़ने में निकल गए। टीचर पढ़ाई जब तक पूरी ना पढ़ा ले और उसकी फाइनल परीक्षा ना हो जाए तब तक ICS, PCS, IAS बन जाते हैं क्या? लकब मिल जाता है क्या? नहीं, तो अभी पढ़ाई चल रही है, अभी जो मुख्य वंडरफुल पार्ट है जो घड़ी में परिवर्तन कर देगा, जो बोला है फरिश्ताई स्टेज बनाने के लिए चीफ जस्टिस को बुला देंगे क्या? वो है सदगुरु का रूप, सख्त रूप, तो गायन है मनुष्य देवता की एक रतन लागी बार। कौन से समय का गायन है? आदि का, मध्य का, अंत का? अंत समय का गायन है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि अभी हम ब्राह्मण हैं क्या? ब्रह्मा के द्वारा क्या बने?
ब्राह्मण।
नंबर वार ऊंची नीची कुरी के ब्राह्मण बने हैं, लेकिन ब्राह्मण पक्के भी होते हैं और कच्चे भी होते हैं। अभी कच्चे ब्राह्मण हैं या पक्के ब्राह्मण हैं? कुछ अनिश्चय आता है या नहीं आता है? अगर बाप के पार्ट पर थोड़ा भी अनिश्चय आता है, ये धर्मराज नहीं हो सकता, ये सदगुरु नहीं हो सकता। माया वायलोरा डालती है ना, तो अभी पक्के ब्राह्मण बच्चे नहीं बने। ये जानते हो कि हम ब्राह्मण बने हैं नंबर वार, फिर दूसरे जन्म में देवता बनेंगे है? दूसरे जन्म में संगम युग में नहीं बनेंगे क्या है? अरे देवता धर्म की स्थापना बाप आकर नहीं करते हैं क्या?
करते हैं।
तीन धर्मों की आकर देश स्थापना करते हैं, ब्राह्मण, फिर ब्राह्मणों की परीक्षा होती है, जो फेल हो जाते हैं वो क्षत्रिय है। माने कम जन्म लेने वाले, कम कलम वाले, और जो पूरे पास हो जाते हैं वो ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। तो अभी कितने धर्मों की स्थापना हुई है? ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई है। अंदर से समझते हैं कि घड़ी घड़ी हम फेल भी हो जाते हैं, तो जब जब फेल हो जाते हैं
क्षत्रिय बन जाते,
तो क्या बन जाते हैं?
क्षत्रिय बन जाते,
क्षत्रिय बन जाते। तो जानते हैं दूसरे जन्म में हम देवता बनेंगे। आज सनातन देवी देवता धर्म ही गाया जाता है, हिंदू धर्म कोई धर्म थोड़े ही था, ये तो मनुष्य लोक है, मृत्यु लोक है। सत्युग को कहा जाता है देवलोक, अमर लोक। शास्त्रों में तो ढेर कहानियां लिख दी, यहां तो बाप डायरेक्ट बैठ पढ़ाते हैं। शास्त्रों में जो कथा कहानियां हैं वो गुरु लोग बैठ करके पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, और यहाँ बाप
डायरेक्ट
पढ़ाते हैं। भगवान वाच है, भगवान ही ज्ञान का सागर है, सुख का सागर गाया हुआ है, शांति का सागर गाया हुआ है। वो सुख शांति का आकर के तुम बच्चों को वर्षा देते, ये सुख शांति का वर्षा तुम्हारे 21 जन्मों के लिए मिलता है। जो बाप के सन्मुख बैठ पढ़ते हो, जो सन्मुख बैठ नहीं पढ़ते हैं, पहले ही शरीर छोड़ देते हैं बेसिक नॉलेज की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, उनको सुख के सागर से डायरेक्ट बस्सा मिलता है क्या? उनको सुख के सागर से डायरेक्ट वर्षा नहीं मिलता। तुम्हारा 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध का वर्ष है, तो कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। ये रूहानी पढ़ाई बाप एक ही बार पढ़ाते हैं, बार बार नहीं आते हैं कि द्वापर युग में भी कृष्ण बन करके आवेंगे, राजयोग सिखावेंगे, त्रेता में राम भगवान बन करके आवेंगे और सतयुग में और रूप धारण करके आवेंगे। कितने भगवान के अवतार दिखाई दिए, गीता में तो लग दिया है संभवामी युग युग, हर युग में आता हूं। बाप कहते हैं मैं हर युग में नहीं आता हूं, वास्तव में कल्प 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 के संगम युगे शूटिंग पीरियड में संसार में प्रत्यक्ष होता हूं। नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था क्या? नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था। किस तरफ इशारा किया?
लक्ष्मी नारायण की तरफ। लक्ष्मी नारायण की तरफ।
कौन से लक्ष्मी नारायण की तरफ?
संगम
युग। लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, या तो सीढ़ी की चित्र में जो बाई और लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं उनकी तरफ इशारा किया कि इन देवी देवताओं का राज्य था। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आज सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहा हूं। ये मुरली तथाकथित ब्राह्मण भी पढ़ते हैं और तुम बच्चे भी पढ़ते हो। मुरली में क्या महावाक्य है? बाप कहते हैं, माँ नहीं कहती है, बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूं। कर रहा हूं माना ये संगम युग में आज सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करके जाता हूं और ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, भले शरीर छोड़ दिया लेकिन वो ब्रह्मा की सोल जो पहले पुरुष के रूप में पार्ट बजाती है, सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन का है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। तो ब्रह्मा हो चाहे कोई भी हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं, पुरुष चोले वाले हैं, सब दुर्योधन दुशासन, उनके द्वारा स्वर्ग के गेट नहीं खुल सकते। तो किनको निमित्त बनाते हैं?
माताओं
कन्याओं को निमित्त बनाते हैं। कन्याओं को भी माता बनना पड़ेगा। क्या बोला बेतवाणी में? मैं आता हूं तो कन्याओं को माता बनाता हूं। तो माताओं के द्वारा, उनमें मुख्य माता कौन? जगदम्बा कहो ब्रह्मा कहो, उनके द्वारा स्वर्ग के गेट खुलवाता हूं। देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना कर रहा हूं। जब वो धर्म था तो वहां और कोई धर्म नहीं था, इसलिए अभी से इशारा दे देते हैं ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा इसमें कोई भी विकारी प्रवेश नहीं कर सके। चंद्रवंश को विकारी कहेंगे निर्विकारी कहेंगे? चंद्रवंश भी उतरती कला है, चढ़ती कला नहीं है। सूर्यवंशियों की चढ़ती कला है, इसलिए सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जाता और चंद्रमा को कलाओं में बांधा जाता है। ओम शांति।